हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो श्लोक क्रमांक 8। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम्। न मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। पहली शिक्षा जो इस अनुवाद से हमें मिल रही है कि इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए या इंद्रियों के शोक को दूर करने के लिए भौतिक संसाधनों से ये क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। इंद्रियां जितनी तर्पण मांगती हैं, अगर हम उतना तर्पण देते रहेंगे तो इंद्रियों का शोक कभी नष्ट नहीं होने वाला, ना तो देवताओं के द्वारा प्राप्त राज्य के द्वारा और ना इस जगत में महान व्यक्ति बन जाने के द्वारा। इस बात को अर्जुन समझते हैं, अनुभव कर रहे हैं और इस कारण से भगवान से ज्ञान की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दिव्य ज्ञान दें जिसके द्वारा मेरा शोक दूर हो जाए। वस्तुतः इस जगत में हर वस्तु हमें दुख देने के लिए ही बनाई गई है। आदि भौतिक कष्ट, आदि आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आदि दैविक कष्ट। तो अगर कुछ सुख देता है तो वह है भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व या शरीर को सुखाए दे रही थीं। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो शत प्रतिशत कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। क्यों हल कर सकता है? क्योंकि जीवन की समस्याओं का मूलभूत कारण है कृष्ण की विस्मृति। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतेव माया दे तार संसार दुख। माया के द्वारा हमें दुख दिए जाने का एकमात्र कारण ये है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं, कृष्ण से अपने संबंध को भूल गए हैं, और न सिर्फ भूल गए हैं बल्कि उन कार्य में प्रवृत्त हैं जिनसे हम कृष्ण को अधिक से अधिक भूल जाएं। नाते विदुह स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिर अर्थ मानिना। इस जगत में हम बहिर अर्थ देखते हैं, यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति के को ही अपना जीवन का अर्थ मानते हैं और इसी कारण से हमें बार 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 दुख भोगने पड़ते हैं। हमारा शरीर रोगों का घर है, इदम शरीरम व्याधि मंदिरम। फिर भी हम सोचते हैं कि भोग इकट्ठे हो जाएंगे, भोगों की वस्तुएं इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और ये कंडीशनिंग, ये वृत्तियां हमारे चित्त पे बहुत गहरी जमी हुई हैं। एक प्रमाणिक गुरु अपने वचनों के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से और अपने आचरण के माध्यम से हमें सिखाते हैं किस प्रकार से हम कृष्ण भावना भावित होकर के अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर लें हमेशा हमेशा के लिए। कितने लोगों ने हमें अपने इस छोटे से जीवन में बताया है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। कितने लोगों ने हमें बताया है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। कितने लोगों ने हमको ये बताया है कि हमारा एक एक एक, एक व्यक्तिगत संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ। कितने लोगों ने बताया है कि हमारा असली धाम जो है वो गोलोक धाम है, वैकुंठ है। तो हम देख सकते हैं कि प्रायः जो भी व्यक्ति हमको मिल रहा है इस जगत में, वो केवल हमारे दुख को बढ़ाने के लिए है। क्यों? क्योंकि वो जो वचन बोलता है, जो बातें बोलता है, उससे केवल कृष्ण की विस्मृति होती है, कृष्ण से अपने संबंध की विस्मृति होती है। तो जो प्रमाणिक गुरु है वो इन बातों को हमें ठीक प्रकार से समझाते हैं शास्त्र के अनुसार, और फिर उसका पालन करके हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु होए। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्व वेत्ता है, तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है, चैतन्य चरितामृत। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षटकर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर् न स्याद् वैष्णवः स्वपचो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। अब बताइए इसके बाद क्या आवश्यकता हो जाएगी और कोई प्रमाण देखने के लिए। अगर आपने, जो उस व्यक्ति ने भी इस श्लोक को सुना है या इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो ये बताइए कि अगर आपने किसी अवैष्णव से गुरु दीक्षा प्राप्त की हुई है तो क्या आप धोखा नहीं खाए हैं? अगर आप बीमार हो और ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हो जो आपको पता नहीं था कि आपको धोखा दे रहा है, लेकिन अगर आपको मालूम चल जाए कि वो धोखा दे रहा है, तो क्या फिर भी धोखा खाते रहना ये बुद्धिमानी है? एक गुरु हमेशा अपने शिष्य को समझाते हैं ठीक प्रकार से कि भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, हमें भगवान के प्रति क्या कर्तव्य करने चाहिए, जिन्हें कि भागवत धर्म कहा जाता है। अपने मनगढ़ंत तरीके से गुरु कुछ नहीं बोलते हैं। इससे पहले भी चर्चा हुई थी कि गुरु परंपरा में आने चाहिए, उन्हें अपना ज्ञान, उन्हें जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो परंपरा में स्वीकार करना चाहिए, वो परंपरा भी प्रमाणिक होनी चाहिए। मनगढ़ंत परंपराओं को स्वीकार करने से ज्ञान ठीक से नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि कोई ब्राह्मण कर्म कांड करने में बड़ा स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन वो गुरु बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि गुरु बनने का उद्देश्य ही है कि जीवात्मा को इस भौतिक दलदल से बाहर निकाला जाए, और जो व्यक्ति कर्मकांडी है या ज्ञानकांडी है वो इस जगत के दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। इस जगत के जन्म मृत्यु चक्र के दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। इसको भी श्रीला श्रीधर स्वामी बताते हैं, हरि स्मृति सर्व क्षमा कीजिएगा, हरिम बिना नैव मृत्युम तरंती, बिना भगवान हरि की शरण लिए कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट पाया है। तो अगर कोई ऐसा उपदेश नहीं दे रहा है तो वो निश्चित रूप से प्रमाणिक गुरु नहीं है। उससे कान फुका करके हमारे कान फूक सकता है, हमारा जीवन फूक जाएगा, लेकिन भक्ति में कोई प्रगति नहीं होगी। कोई मान लीजिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय देता है, लेकिन उससे पहले पूछता है कि तुम्हें कौन से देवता का मंत्र चाहिए, तुम्हें राम का चाहिए, कृष्ण का चाहिए, कि वसुदेव का चाहिए, कि शिव जी का चाहिए, कि दुर्गा जी का चाहिए, कि गणेश जी का चाहिए, कि ऐसे करके अगर बहुत सारे वो मार्केट खोल लेता है कि भाई तुम्हें कौन से देवता का मंत्र चाहिए, उसका मंत्र मैं तुमको दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से प्रमाणिक गुरु नहीं है। ये इस इल्यूजन में मत रहिएगा कि गुरु कोई भी मंत्र दे देंगे और उससे मुझे कोई भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है उस व्यक्ति ने स्वयं भी परंपरा में ज्ञान और मंत्र की दीक्षा प्राप्त नहीं की है, इसी कारण से वो ऐसी बातें बोल रहा है कि तुम किसी का भी मंत्र बोलो, ले लो, और तुम्हारा उतना ही लाभ प्राप्त होगा। संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करोड़ रुपए हैं मान लीजिए आपके पास, करोड़ों रुपए भी हो आपके पास, क्या आज आप मृत्यु से बच सकते हो? नहीं बच सकते। क्या व्याधि नहीं आएगी? ठीक है, व्याधि का इलाज कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि व्याधि आए। और बहुत बार तो ऐसी असाध्य व्याधि आती है कि पैसा होने के बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनमें उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। सत्य बात है, अमीर है उसको भी माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, अमीर को भी मरना पड़ता है, अमीर को भी बुढ़ापा देखना पड़ता है और बीमारियां उसको भी आती हैं। तो पैसा इकट्ठा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हुई कहाँ, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं। इस बात का उदाहरण प्रभुपाद जी अपने अनुभव अमेरिका से दे रहे हैं। अमेरिका में भी किलों के पास कितना अधिक धन धान्य है, फिर भी ये चार प्रॉब्लम से, समस्याओं से वो उसी प्रकार से ग्रसित हैं जैसे एक रिक्शा वाला भारत में। ये विभिन्न साधनों से शांति कोसते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। क्या परामर्श है? सवैपुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसीदति। आत्मा को का सुप्रसीदन, आत्मा का बढ़िया से खुशी या बढ़िया से आनंद आत्मा को तब प्राप्त होगा जब भगवान अधोक्षज, जो कि हमारी इंद्रियों के परे हैं, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनके चरणों में अहेतुकी यानी बिना किसी भौतिक आकांक्षा के और लगातार भक्ति प्राप्त हो जाए। एक्चुअली जब हम कोई भौतिक आकांक्षा नहीं होगी तो कोई भी भौतिक परिस्थिति हो हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में, स्वस्थता में, सब हर परिस्थिति में कर पाएंगे और उसी से आत्मा को सुख प्राप्त होगा। यही बात भगवान भगवद गीता में बताते हैं 5वें अध्याय में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। और जिस व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं है उसको सुख नहीं मिल सकता। इस बात को भगवान गीता में बोलते हैं, अशांतस्य कुथा सुखम सुखम। अगर हृदय में भौतिक वासनाएं हैं तो मन चित्त जो है हमारा, मन जो है वो हमेशा अशांत रहेगा और अशांत व्यक्ति को सच्चा सुख, आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी पहला प्रोसेस है चेतो दर्पण मार्जनम, यानी हृदय की सफाई। और जब हृदय साफ होता है तब धीरे धीरे हृदय शांत होता है और तब भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव वो कर पाता है। यदि आर्थिक विकास, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जीवात्मा हमेशा परामर्श के प्रति, सजेशंस के प्रति ओपन रहता है, चाहे वो बुरे हों चाहे वो अच्छे हों। तो अगर हम लोग बुद्धिमानी करके भगवत गीता और भागवतम के परामर्श को सुनते रहते हैं बार 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 बार, तो भले ही एक बार में हमें समझ में ना आए, भले ही हमें पहली बार ना स्वीकार करें कि कृष्ण को भूलने मात्र से हम जगत में दुख भोग रहे हैं, लेकिन जब बार बार सुनते रहेंगे, जब करते रहेंगे, तो धीरे धीरे एक दिन वो बात हृदय में धंसेगी कि कृष्ण को भूलने के कारण ही मैं इस जगत में दुख भोग रहा हूं। यदि आर्थिक विकास तथा बौद्धिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोकों में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मान लीजिए ये तर्क किया जाता अर्जुन से कि आप अगर युद्ध लड़ोगे और अगर इसमें मृत्यु को भी प्राप्त हो गए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो कह रहे नहीं, मैं अगर अपने गुरुजनों को मारूंगा, मार करके मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो तो भी मेरे सर पे इतना पाप होगा, जो कि बातें थोड़ी अजीब सी हैं कि स्वर्ग प्राप्ति होगी तो सर पे पाप कैसे होगा, लेकिन फिर भी इतना पाप होगा तो मैं कैसे वहां पे सुखी हो सकता हूं। तो जो हृदय की असंतुष्टि है वो भौतिक चीजों से पूर्ण नहीं हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो, कस के भूख लगी हो, कस के प्यास लगी हो, तो क्या उसको माला पहनाने से वो संतुष्ट हो जाएगा? या किसी को बहुत तीव्र रूप से बाथरूम लगी हो तो क्या उसको माला पहनाने से या कुछ भोजन देने से संतुष्ट हो जाएगा? वो नहीं हो सकता। जो जीव की आवश्यकता है वो है भगवान श्री कृष्ण से अपना प्रेममय संबंध दोबारा स्थापित कर लेना, और ये भक्ति के द्वारा ही होता है। और जब तक ये नहीं होगा कुछ भी कर लें हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। आजकल भले ही चंद्रलोक पर जाने का वो प्रयास न करें, लेकिन प्रभुपाद जी ने जब ये तात्पर्य लिखा था तब इस प्रकार के निरर्थक प्रयास किए जा रहे थे। व्यक्ति अपने ही जगत में सुखी नहीं है। एक बार एक साइंटिस्ट ने पूछा इस संबंध में कि हम चंद्रलोक में जा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने बोला आप क्या करोगे वहां जाके, तो बोले हम घर बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखिए घर बना करके आप यहाँ क्या करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, आप वहां जाकर भी यही कार्य करोगे, आहार निद्रा भय मैथुन, तो अंतर क्या रह जाएगा। जिस चीज के लिए मानव जीवन मिला है ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, उसको में ना लग करके अपनी मानव शक्ति को इन व्यर्थ के प्रयासों में वेस्ट करना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, श्रीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। ठीक है, मान लीजिए वहां बुढ़ापा नहीं होता है, मान के लीजिए ऐसा होता ही है, स्वर्ग में किसी को कोई व्यक्ति बुढ़ा नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन मृत्यु का समय निश्चित होता है और मृत्यु तब होती है जब व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उससे पहले भी नहीं होगी, कोई रोड एक्सीडेंट में नहीं होगा, कोई बीमारी से नहीं होगा, किसी कारण से मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर गिरना पड़ेगा। तो इस बात को भगवान बोलते हैं गतागतम काम कामा लभन्ते, काम वासना से पूरित होकर के, भोगों की इच्छा से पूरित होकर के व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा करता है। अगर वो करे, आजकल तो लोग स्वर्ग को विश्वास ही नहीं करते, लेकिन अगर वो करता है तो स्वर्ग में जाकर के पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग में जाता है, और उसके बाद फिर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो यहाँ गिर जाता है। जैसे हम कुछ धन लेकर के एक 5-स्टार होटल में जाएंगे, तो जब तक हमारे पास धन है तब तक तो हम वहाँ बढ़िया रह से रह सकते हैं, सुख भोग सकते हैं, लेकिन जब धन समाप्त हो जाएगा तो वापस अपने टूटे फूटे घर में आकर रहना पड़ेगा। इस तरह विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है, ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि स्वर्ग प्राप्ति करूंगा और उसके बाद फिर पुण्य खत्म होंगे, फिर गिरूंगा तो फिर शोक होगा, तो इसलिए स्वर्ग प्राप्ति से भी मेरा शोक निवृत्त नहीं होगा। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। और इस बात को आगे भगवान गीता में बताते हैं, मां शुचा, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है कि हाय मैं तो इतना पापी था, हाय तो मैंने ये कर दिया, हाय तो मैंने वो कर दिया। इन सब बातों में कोई दम नहीं है, इनमें विचार करने की बजाय व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं कैसे कृष्ण की शरण अधिक से अधिक लूं। श्रील प्रभुपाद इस संबंध में समझाते हैं कि मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं, शादी का आयोजन कर रहे हैं घर में, या पार्टी कर रहे हैं, या कोई और बड़ा आयोजन कर रहे हैं, और कुछ आपको कार्य करवाना है, लेट्स सपोज कोई टेंट लगवाना है, तो अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हो अरे मैं बहुत चिंतित हूँ, मुझे टेंट लगवाना है, कैसे होगा, तो और व्यक्ति बोल देता है आप चिंता मत करिए, मेरे पे छोड़ दीजिए, तो हम ये खाली वचन सुन करके, और अगर हमें लगता है कि व्यक्ति विश्वसनीय है तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, ठीक है वो उस व्यक्ति कार्य कर लेगा। उसी प्रकार से अपने आप अपनी शक्ति से, अपने पापों से निवृत्त होने की बजाय भगवान की शरण लेना चाहिए, और भगवान बोल रहे हैं कि हमें हर प्रकार के पापों से वो मुक्त कर देंगे। और भगवान की शरण लेने का मतलब है भगवान की भक्ति के प्रोसेस में संलग्न होना। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो उसके बाद अर्जुन यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम अपनी शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर के उनके परामर्श को हमें स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा।